सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सेशन जो है 5 दिन का, इसमें हम क्या सीखने जा रहे हैं, ये आपके जीवन में किस तरह से हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए पहले एक कहानी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से शुरुआत करते हैं। तो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव था और एक दिन उसको सपना आया। तो सपने में उसने देखा कि वो एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर हो रहा है और आज सुबह एग्जाम है और वो सुबह उठा है और कुछ सुबह सुबह पढ़ने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है, रिवाइज कर रहा है, रिविजन करते हैं हम लोग, और जैसे बुक खोलता है उसको लगता है कि वो सब भूल रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है ढंग से क्या क्या पढ़ा। आप समझ सकते हो कि ऐसे में कितनी क्या होगी एंग्जाइटी, एंट्रेंस एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। तो बहुत थोड़ा धीरे उसकी एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है और दुखी हो रहा है और फिर अभी टाइम भी बहुत कम रह गया है। सो अल्टीमेटली फिर वो चलता है एग्जाम सेंटर के लिए, हाँ, और सेंटर पे जाता है तो अपनी बाइक देखता है, उस पंचर बाइक में पंचर है, उसकी एंग्जाइटी भी और डर जाती है कि आज सब कुछ बुरा लग रहा है, क्या है इधर बाइक में पंचर है। फिर एक ऑटो रिक्शा लेता है, ऑटो जाता है तो फिर आगे ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। इस तरह से बहुत प्रकार की मुश्किलें होती हैं और फिर इधर उसकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो जाती है, जब चिंता होती है तो क्या पूरा पेट अपसेट हो जाता है, उल्टियाँ लगती हैं, ऐसे पूरे उसका तबीयत भी खराब हो जाती है, तो और डिस्ट्रेस रहता है, उसको लगता है क्या होगा आज, और फिर किस तरह से हॉल में पहुँचता है और जब पेपर सामने आता है जैसे उसकी पूरी ब्रेन ही पूरी वॉश आउट हो जाता है, समझ नहीं आता क्या होगा। और सब स्टूडेंट देखता है, सब चारों तरफ उसके सब लिख रहे हैं अच्छे से, लेकिन उसको कुछ याद नहीं है। और इस प्रकार से उसकी जो चिंताएं हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो पसीना पसीना हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था उसके जीवन का। तो आप सभी से इस छोटी सी जो ये इंसिडेंट है इसके बारे में क्वेश्चन है, और जो लोग ये क्वेश्चन आंसर करना चाहें वो लोग हाथ उठाएं। हाउ कैन यू हेल्प हिम, हाउ यू कैन हेल्प दिस पर्सन रिलीव हिज एंग्जाइटीज, उसकी चिंताओं से निकालने के लिए आप क्या मदद कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं, रेज योर हैंड्स। ओके, ओके, उनका आंसर आपने सुना और इससे दूसरा किसी का आंसर, यस, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। अच्छा, और
ये
एग्जाम ही है जीवन का अंत नहीं है, सोचना चाहिए। और किसी को उत्तर, हमने आपको बताया कि वो सपना देख रहा है, यदि आप उसको उठा देंगे सपने से तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक्चुअली वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव है ना, रियलिटी में वो एग्जाम के लिए नहीं होता है, वो ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुका है, नाम ऑलरेडी डूइंग ए जॉब, तो उसको काहे का डर है एग्जाम का और काहे का जरूरी। सो इज जस्ट ड्रीमिंग, तो हाउ यू कैन हेल्प हिम, जस्ट वेक हिम अप, सो इफ यू वेक हिम अप ऑल प्रॉब्लम्स आर गॉन, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम तो रियलिटी में उसके लिए एग्जिस्ट करती नहीं, इज नॉट ए स्टूडेंट, इज नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जाम, इट इज जस्ट ए ड्रीम, एंड सो ही इज वेरी मच बेटर। प्रैक्टिकली ऐसा होता है सबके जीवन, कई बार हम सपना देख रहे होते हैं बहुत डर जाते हैं, जब सपने से उठने लगता है वो एक्चुअली ये तो सब एक सपना था, ओह इमीडिएटली वी बिकम वेरी हैप्पी, अच्छा अच्छा ये तो सब बेकार है। सो इसको आधुनिक परिभाषा में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट, हम एक प्रकार के एनवायरमेंट में एक प्रकार की समझ में होते हैं, उससे पूरा विपरीत या दूसरा एक समझ उसे पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ये सब समस्याएं जो थी उसकी कि पंचर हो गया, उसको उल्टी हो गई और भूल रहा है, ये सब की सब बहुत प्रकार की समस्याएं हैं। तो हम इसके कई समाधान बोल सकते हैं, अरे भाई पंचर हो गया तो पंचर रिपेयर कराओ, हाँ दवाई दो उल्टी आ रही है तो, और क्या क्या कह सकते हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का सिंपल समाधान है कि यदि वो अपनी वास्तविकता में आ जाए कि मैं सपना देख रहा हूँ, वो छूट जाए कि, तो ऑटोमेटिकली एक चीज से सब समस्याएं सॉल्व हो जाए। तो इन 5 दिन के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे ही एक आप सबके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट है, जीवन को एक बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखने की बात है। और ये नजरिया हमें दे रही है श्रीमद् भगवद् गीता। तो इन 5 दिन के अंदर हम जो डिस्कशन करेंगे उसका आधार रहेगा श्रीमद् भगवद् गीता, लेकिन विद लॉजिक विद रीजनिंग हम लोग अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, सो वी हैव रीजनिंग पावर। यहाँ पर हम लोग ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास इस तरह से नहीं चलेंगे, विल गो विद रीजन विद लॉजिक, एंड विद लॉजिक वी विल अंडरस्टैंड व्हाई वी शुड एंड हाउ वी शुड अंडरस्टैंड भगवद्गीता, इस तरह से चलेंगे। तो इसलिए अगर इस कोर्स से हम फायदा उठाना चाहते हैं मैक्सिमम, तो आपको जो अभी तक जो आपने भगवद्गीता के विषय में सुना है टीवी में से या कुछ सामान्य किताबों से या अपने दादी से दादा से पड़ोसियों से, भगवान ये हैं, भगवद्गीता ये है, भागवत महाभारत ये है, तो ऐसे जो प्री कंसीव आइडियाज़ हैं जो किसी लॉजिक पे बेस नहीं हैं या जो किसी शास्त्र की अंडरस्टैंडिंग पे बेस नहीं हैं, उनको आपको कुछ समय के लिए छोड़ देना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम एक ऑलरेडी एक प्री कंसीव आइडियाज लेकर के शुरू करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा क्या है, ही शुड बी लाइक ए प्लेन स्लेट, तब टीचर जो है बहुत आसानी से ही कैन राइट। तो इसलिए अपेक्षा है, क्योंकि हम लॉजिक जा रहे हैं, लॉजिकली जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आपके ऊपर कोई कुछ भी इम्पोज नहीं करने जा रहे हैं ब्लाइंडली, जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो इसलिए यू कैन बी वेरी रिलैक्स्ड एंड ऑल्सो गिव अप योर प्री कंसीव्ड आइडियाज, वी आर स्टार्टिंग ए फ्रेश फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल। क्योंकि ये जो श्रीमद् भगवद् गीता है ये बिल्कुल आधारभूत प्रिंसिपल्स को लेकर के है, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग दैट अ ह्यूमन बींग कैन स्टार्ट फ्रॉम एक मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के अंदर रीजनिंग पावर है, उस रीजनिंग पावर का यूज करते हुए हम आगे जाएंगे और धीरे धीरे अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने बताया कि पैराडाइम शिफ्ट से हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं, तो ये जो सेशन है ये आपको ऐसी अनेक अनेक समस्याएं जो पर्सनली आप लोग फील कर रहे हैं या समाज के अंदर जो आप देख रहे हैं कि ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिनका हमें कोई उपाय नजर नहीं आता और जो धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती जा रही हैं एक बीमारी की तरह से, हाँ, और उसको लेकर के आप चिंतित हैं, चाहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन लेकिन कोई सुलझा नहीं है, ऐसी इन सभी समस्याओं का कैसे मूल से निवारण होगा ये आपको इन 5 दिनों से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो 2 मिनट आप सोचिए आपके जीवन में आपके पर्सनली या समाज को लेकर के परिवार को लेकर के ऐसी कौन सी एक सबसे बड़ी समस्या है जो आपको सबसे ज्यादा सताती है, इट बॉदर्स यू मोस्ट, उसका उपाय आपको पता नहीं, इट्स वेरी हर्टिंग यू, ऐसी एक समस्या आप सोचिए और बताइए। Who will tell first? Generation gap. पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चे और उनके बीच में जनरेशन गैप, ओके, पेरेंट्स की कुछ एक प्रकार की भावनाएं हैं, एक प्रकार की वैल्यूज हैं, यही होना चाहिए, और हम लोग कहते हैं क्यों ऐसा क्यों,
उनके पास अगर कोई रीजन ही होता बताने के लिए,
बिना रीजन के जस्ट इम्पोजिशन, Yes, Ravi.
Self-discipline of
people.
Citizen of India.
अच्छा.
मतलब जैसे कोई गया यहाँ पे घूम गया या कोई यहाँ पे
yes, yes,
घूम रहे हो नदी
में yes, yes. So we come across so many times that why people are not behaving themselves? Why can't they understand? Why they are troubling us? इस वजह से दूसरों को trouble होगी. Why can't they think it? Self discipline. कब लोग सीखेंगे सेल्फ डिसिप्लिन जिससे कि सब पूरा समाज अच्छा हो. वेरी गुड. देन एनी अदर प्रॉब्लम विच इज ट्रबलिंग योर लॉट. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी योर एग्जाम्स. आई एम श्योर यू मस्ट बी ऑल हैविंग दिस एग्जामोफोबिया. नॉट नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर मेनी. आपके लिए फिर भी जाग नहीं रहा. तो मृत्यु कि हम विवश हो रहे हैं और अपने अंत की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, धकेले जा रहे हैं और उसका हमारे पास कोई उपाय नहीं. नोबडी वांट्स टू डाई बट ही इज फोर्स. एवरीवन इज फोर्स. वी ऑल नो कि धीरे 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 हम जा रहे हैं मृत्यु के मुंह में और हम लाचार हैं. और मृत्यु मतलब हमारे सब रिलेटिव्स, हमारे सब जो भी हम इस समय हमारे साथ है वो सब से हम चले जाएं. लेट्स गो. ओके. इन्फ्लेशन. वेरी गुड. करंट प्रॉब्लम इन्फ्लेशन. 6 दिन के अंदर सेंसेक्स हैज रोज 3 पॉइंट्स 6-7 दिन के अंदर फ्रॉम 8 टू 11 समथिंग. या सो क्या होगा इसका? इट्स माइंड बॉगलिंग. ऐसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? पेट्रोल डीजल कहाँ जाएगा? मेरे पास मेरी इनकम तो 2,000 रुपये, उसके बाद से बढ़ेगी नहीं. और इन्फ्लेशन बढ़ाते रहेंगे तो मेरा क्या होगा? परिवार का क्या होगा? कैसे खाना खाएंगे हम? कैसे गैलॉप्स में जाएंगे? कैसे रिलायंस मार्ट में चीज खरीदेंगे? इट्स बिग प्रॉब्लम. इधर फैमिली की डिमांड बढ़ती जा रही है, उधर रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या करूँ? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, डे टू डे प्रॉब्लम. यस. देन
हम भी सेफ नहीं है. जो काम कर रहे हैं पता नहीं अभी कैसे क्या होगा.
इनसिक्योरिटी
होगा या नहीं होगा.
यस.
अगर आज तो कहीं जगह जॉब कर रहा हूँ कई जगह, तो कल वो नौकरी में रहेगी या नहीं रहेगी.
हाँ. वेरी गुड. इज अनदर बिग प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी. कल क्या होगा? नथिंग इज सिक्योर. यू कैन नॉट से फॉर श्योर कि ऐसे हम जा रहे हैं ये होगा ये होगा. सडनली थिंग्स हैपन विच वी डोंट वॉन्ट एंड विच ट्रबल अस लॉट. You are just going and it was very nice and it was a nice day and suddenly you met an accident and fracture and oh, 1 month I have to be in the bed. Oh. Or suddenly you lose a job. Your company was doing good but suddenly things gradually changed and then your company is no more viable. And what to do now? Like that, insecurity in different reasons. Yes.
Underestimation.
Pardon?
Underestimation.
Underestimation. Means exactly what do you mean?
नीचा
दिखा.
हाँ.
हाँ. दूसरे को देख के ईर्ष्या और द्वेष. ओके. वो आप कह रहे हैं पर्सनल पर्सनल डीलिंग्स में. यू नो स्पेशली दिस कॉम्पिटिटिव टूडेज वर्ल्ड एवरीवन इज ट्राइंग टू बी अहेड ऑफ एवरीवन एल्स एंड सो वी फील एटमॉस्फेयर वेयर यू गो हैवी कॉम्पिटिशन. सबके बीच में जैसे एक युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर बिटवीन ऑल ऑफ अस. दो वी मे स्माइल, हम लोग जाते हैं हाउ आर यू हे नाइस, बट इंटरनली एवरीबॉडी थिंकिंग आई वांट यू टू बी डाउन. सो होल एटमॉस्फेयर इज चार्ज्ड विद सच एनमिटी, हेट्रेड, एनवियसनेस एंड विच क्रिएट्स बर्निंग इन आवर हार्ट. टेररिज्म अनदर बिग प्रॉब्लम. टेररिज्म क्या होगा धीरे धीरे? ये अभी बिन लादेन फिर वो लादेन फिर ये और वो सब ऐसे थे. कहीं भी बॉम्ब एक्सप्लोजन हो सकता है. इट कैन बी अवर रिलेटिव्स इन दैट और माई सेल्फ ऑल्सो इन दोज एक्सप्लोजन सडनली. ऐसे बिग प्रॉब्लम इज कमिंग अप. ग्रेजुअल पीपल आर बिकमिंग फैनेटिक्स एंड दिस इज गो एंड किल. ऐसे होगा? ऐसे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? एक दिन कोई सेफ नहीं रह जाएगा. यू जस्ट गो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. पॉल्यूशन अनदर बिग प्रॉब्लम. अभी धीरे धीरे ओजोन डिप्लीशन एंड दिस एंड दैट. नो सॉल्यूशन. इसका क्या होगा? ये तो अभी CNG आया है. ओके. बट देन यू नो इट्स ऑल्सो ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स. सो आफ्टर दैट वॉट? अभी वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली लाइफ साइज. बट कैन इट रिप्लेस ऑल द फ्यूल रिक्वायरमेंट थ्रू द वर्ल्ड? और अल्टीमेटली थर्मल पावर स्टेशन से तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना. सो वॉट अबाउट दैट energy needed there, fuel needed there. Pollution and then fuel crisis. Fuel crisis. Abhi hum log crude oil le rahe hain, lekin ek samay abhi dheere aa raha hai ki ek gallon crude oil nikalne ka cost is more than the cost of the gallon which you save. To isliye bhale hi wo niche tel hai, but it is not viable. You cannot, you know, take it out. Fuel crisis, big thing. Fuel crisis, kya hoga? Next 20 years, they have estimated 20 years this oil depletion will be there and so many things. So what will happen to industries? What will happen to everything? Just you see, these buttons, this button, you know, you need petrol for these buttons. You see, petrol for everything. Whatever you are eating, you need petrol and diesel for that, you know. The water which you are drinking, for that you need petrol. So if no petrol and you are eating, you are drinking, everything is going to be affected. It's a big problem. Yes. So, okay. So, aise karke, there are myriads of problems. Hajar hajar samasya hai sabke yahan. Aapko kuch samasya keh rahe hain, uske alawa all individual problems bhi hoti hain. Ek bahu hai, uske saas usko pareshan karte hai, uske wo bahut badi problem. Simple thing. She commits suicide sometimes because of that. So as there can be thousands of problems. तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा वर्तमान क्या हमेशा से भौतिक जगत जो है उसमें हर व्यक्ति चिंता से ग्रस्त है किसी ना किसी इशू को लेकर. We all accept this. So many unlimited anxieties. और ये मृत्यु के समय तक रहती है. हमको लगता है अगर ये मैं को प्राप्त हो जाए then my life will be problem free. अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए माय लाइफ विल प्रॉब्लम फ्री. मेरे को जॉब मिल जाए प्रॉब्लम फ्री. लेकिन क्या कभी ऐसी स्टेज आती है देन लाइफ बिकम्स प्रॉब्लम फ्री. वन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स गोज एंड न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स स्टार्ट्स. सो लाइक दैट इन दिस प्रॉब्लम दिया. तो कितना अच्छा होगा यदि आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, एक सॉल्यूशन जिससे ये सब थाउजेंड्स वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स आर जस्ट सॉल्व लाइक दैट सेम एज ड्रीम. हटने पर वो ड्रीम के अंदर की सब प्रॉब्लम्स चली जा चुके होते हैं. टीवी दिखाते हैं पेन गायब हो गया ऐसे ही सडनली सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. इतनी ऐसे ताली बजाते ही आराम से तो कितना अच्छा होगा. यू लाइक लाइव इट लव इट ओके. तो भगवत गीता हमें वैसे ही सॉल्यूशन देती है. तो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो किस आधार पर देती है बहुत सिंपल लॉजिक है विच यू कैन ऑल फॉलो वेरी इजी. ये हमने जितनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की बीमारियां हैं पोल्यूशन है हमारे को ये सब है दिस आर ऑल बेस्ड ऑन द बॉडीली बेस्ड ऑन बॉडी शरीर के संबंध में है सब बीमारियां. इन्फ्लेशन तो ये जो सोसाइटी है जो हमने बनाया इकोनॉमिक सिस्टम ये हमारे द्वारा बनाया गया है और ये हमारी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के अंतर्गत ये इन्फ्लेशन लड़ रहा है बीच में प्रॉब्लम हो रहा है ना. और क्या क्या प्रॉब्लम थी आपकी क्या थी अंडर एस्टिमेशन. तो मानसिक स्तर से कि हम अपने को बड़ा सोचते हैं कि झूठा सोचते हैं मन के स्तर से की गई प्रॉब्लम है. और क्या था आपका क्या था
सेफ नहीं है
सेफ नहीं इनसिक्योरिटी. तो हम मर जाएंगे तो क्या होगा और कल को हमारा जॉब चेंज है क्या होगा. अगेन विद रेफरेंस टू बॉडी मृत्यु मृत्यु मतलब शरीर का क्षय हो जाएगा. और फिर आप लोगों ने एक चीज तो नहीं बोला किसी ने बीमारी देयर आर थाउजेंड्स यू गो टू हॉस्पिटल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिजीजेस एंड हॉरिबल हॉरिबल डिजीजेस. जब तक हम नहीं है उसमें हम लगता है ठीक है पर जब जिसको होती है मैन ही नोज व्हाट इट इज. सो बीमारी किसके रिस्पेक्ट में होती है बॉडी के रिस्पेक्ट. सो भगवद गीता हमें समझा रही है भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी. So what happens to all the problems which are related to this body? They are not your problem. They are not your problem. They are just वो केवल शरीर के संबंध में है और लेकिन आप शरीर नहीं हैं. आप शरीर से बिल्कुल भिन्न हैं. तो जैसे जैसे हम इस तथ्य को समझेंगे अपने जीवन में अपनाएंगे अभी हम जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं धीरे धीरे तो आप समझिए यदि आप इस अंडरस्टैंडिंग में एस्टैब्लिश हो गए और रियली Actually, I am not this mind, I am not this body, I am completely different entity. तो फिर क्या मृत्यु का परेशानी हमको परेशानी लगेगा? Because एंटिटी आत्मा डिफरेंट कम्प्लीटली फ्रॉम बॉडी, जिसका मृत्यु होता ही नहीं, तो फिर मृत्यु का डर लगेगा। जैसे शर्ट, अभी शर्ट पुराना हो जाएगा, एक दिन फट जाएगा, तो क्या इसकी वजह से आप परेशान होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? शर्ट इज नॉट यू, आपको पता है शर्ट फट जाएगा, दूसरा शर्ट पहनूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है? अरे किसी ने बोला तुम्हारी शर्ट बिल्कुल बेकार है, आपको परेशानी होती? शर्ट बेकार है, ठीक है होगी, मेरे मैं तो बेकार नहीं हूँ, शर्ट बेकार है, तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और कोई शर्ट को बोले शर्ट अच्छी नहीं, ठीक है अच्छी नहीं, क्या बड़ी बात है, शर्ट तो शर्ट है, इट्स नॉट मी। तो ये जितनी भी समस्याएं समाज में देख रहे हैं वो ये शरीर और मन इससे उत्पन्न है, लेकिन भगवद्गीता हमको समझाती है कि एक्चुअली हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम इससे बिल्कुल अलग हैं, आत्मा, और आत्मा को इन इसीलिए इन शरीर की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये शरीर से बिल्कुल अलग हैं, और शरीर की समस्याएं आत्मा की समस्याएं नहीं है। जैसे वो आपने बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, उसको वो एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट कंप्लीटली डिफरेंट। तो उसी प्रकार से आत्मा को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, इन हिज ओरिजिनल, इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, उसकी जो वास्तविक स्थिति है आत्मा की, उस स्थिति में आत्मा को शरीर से कोई संबंध नहीं। जैसे नारियल आप सब लोगों ने देखा होगा, तो जब नारियल कच्चा होता है तो जब उसके ऊपर की शल को हम तोड़ते हैं तो जो उसके अंदर वाइट सब्सटेंस जो होता है वो भी टूटता है साथ साथ, क्योंकि दोनों बिल्कुल चिपके होते हैं। लेकिन जब नारियल पक जाता है और सूख जाता है तो क्या होता है, जो बाहर की शेल है उससे वो जो वाइट सब्सटेंस है वो अलग हो जाता है। अभी हम जब ऊपर की शेल को तोड़ते हैं तो अंदर का शेल निकल जाता है एकदम से ऐसे बाहर, बिना किसी, बिना टूटे हुए। तो उसी प्रकार से भगवद्गीता के अनुसार अभी हम हैं तो आत्मा, लेकिन अपने को इस जड़ शरीर से एक करीब माने हुए हैं। एक जैसे वो आदमी बिजनेस एग्जीक्यूटिव रात को सोते समय सपने के कारण अपने को मान लिया कि मैं एक स्टूडेंट हूं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने जा रहा हूं, एक्चुअली है नहीं, बट ही थॉट इम्पोज्ड, ये उसने अपने ऊपर इम्पोज कर दिया, और जिस इम्पोजिशन की वजह से उसको बहुत परेशानी हुई, पसीने निकल रहे थे, सोते समय हमारे पसीने भी निकलते हैं दर में, हैव यू एक्सपीरियंस, हम चिल्लाते भी कभी, सो रियली वी सफर इट, हैव यू एक्सपीरियंस, सो रियली वी शाउट एंड वी रियली फील। तो लेकिन उस ये सब डर, ये सब क्यों हुआ, उसने एक आर्टिफिशियल चीज को, अनरियलिटी को अपने ऊपर इम्पोज कर लिया, इसलिए हुआ, अदरवाइज वो प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो सॉल्यूशन करने की बात ही नहीं, जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या करें। सो प्रॉब्लम इज, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दैट ही इम्पोज्ड एन अनरियल सिचुएशन ऑन हिमसेल्फ, उसने गलती से अपने को सोच लिया कि मैं एग्जाम पास कर, एग्जाम में अपीयर हो जाऊं। उसी प्रकार से भगवद्गीता के अनुसार वास्तव में हम शरीर नहीं है, लेकिन हम वर्तमान स्थिति में अपने ऊपर ये बॉडी के कंसेप्ट को, कि मैं ये शरीर हूं, ये मेरा है, इसको अपने ऊपर धारण कर लिए हैं, जिसकी वजह से शरीर के संबंध में जो भी कुछ हो रहा है उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। नहीं तो शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है, तो इसलिए मृत्यु का भय आत्मा को नहीं होना चाहिए। लेकिन जब तक हम अपने को ये शरीर माने बैठेंगे तब तक हमें वो भय रहेगा, क्योंकि शरीर का तो अंत निश्चित है, इसलिए निश्चित है कि हम भी परेशान होंगे। तो इस प्लेटफॉर्म से भगवान शुरू करते हैं भगवद्गीता, क्यों, क्योंकि अर्जुन को क्या हुआ था, भगवद्गीता शुरू कैसे हुई थी, तो अर्जुन जब युद्ध करने आए और देखे उनके सामने तो उनके सभी भाई हैं और गुरु हैं और भीष्म पितामह हैं, तो कांपने लगे, वो डरे नहीं, वो तो बड़े बड़े योद्धा थे, ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़ चुके थे, लेकिन अपने सगे संबंधी को मैं कैसे मारूंगा, अपने गुरु को कैसे मारूंगा, उनके प्रति कैसे मैं तीर छोड़ूंगा, और मेरा कर्तव्य इस समय क्या है, ऐसा सोच सोच करके ये मैं सही करूंगा या गलत करूंगा, अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो ये जो जीत है वो इनके खून से रगी होगी, ऐसी जीत का क्या फायदा है, इससे तो अच्छा होगा मैं जंगल में चला गया भिक्षा मांग के रहूंगा तो अच्छा है, ऐसे सब विचार उनके मन में आने लगे और वो पूरे कंफ्यूज हो गए, और वो गांडीव जो है वो रख दिए। جو کبھی وہ نیچے نہیں رکھتے تھے، ایسا گاندھی خود اپنے آپ رکھ دیے اور رونے لگے پریکٹیکل، اور بھگوان سے پوچھنے لگے کہ بھگوان میں پوری طرح سے کنفیوز ہو گیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے پلیز ٹیل می واٹ از رائٹ واٹ از رانگ. تو بھگوان نے ارجن کو، جب ارجن نے اپنے گرو کے روپ میں بھگوان شری کرشن کو سویکار کیا، تو بھگوان نے سب سے پہلا لیسن جو ارجن کو دیا، جو ان کی سبھی کنفیوژن کا، بیماری کا روٹ تھا، وہ کیا کہا؟ اشوچیان انوشوچستم پرگیا وادام شبھاشسے گتاسون اگتاسون نانو شوچن دی پنڈتا. یہ ارجن تم بات تو کر رہے ہو جیسے تم بڑے پنڈت ہو، کیونکہ ارجن بڑے سارے ترک رکھ رہے تھے، ایسا ہوگا تو ایسے ایسا ہوگا، یہ سب بڑے مارے جائیں گے تو استریاں دوشت ہو جائیں گی اور پھر ورن سنکر پرجا اتپن ہوگی، سماج کا ناش ہو جائے گا، ایسے ایسے بہت سارے ترکپورن باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی کنفیوز تھے. اور اسی لیے بھگوان کی شرن میں آئے اور بھگوان نے ترنت ان کو ڈانٹا کہ تم پنڈت جیسی بات کر رہے ہو، لیکن جو تم بات کر رہے ہو وہ پانڈتیہپورن نہیں ہے، کیونکہ جو بدھیمان ہے وہ ویکتی یہ نشور شریر کے لیے شوق یا ہرش نہیں کرتا. تو سب سے پہلے لیسن بھگوان نے کیا دیا ارجن کو؟ دیر اسمن یتھا دیہے کومار یوگنم جرا تتھا دیہانتر پراپتی دھیرس تتر نمویتی. کہ ہے ارجن، جو دھیر ہیں، دھیر جو دھیر ہیں، وہ یہ دیہ کے انتر ہونے پر، دیہ کے بدلنے سے پربھاوت نہیں ہوتے. دہینو اسمن یتھا دیہ کومارم یوگنم جرا، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے اسی جیون میں ہم الگ 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 دیہ، ایک دیہ چھوڑ کر کے نیا نیا دیہ لے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں مر رہے ہیں دیہ کے مرنے کے ساتھ، اسی پرکار جب انت میں ہماری جو دیہ چھوٹے گی تب بھی ہم نہیں مریں گے، ماتر ہم ایک نیا دیہ گرہن کریں گے. اس لیے وہ یہ دیہ کے انتر کو لے کر کے دیہانترن سے بھیبھیت نہیں ہوتے. کیونکہ ارجن کا شوق کا کارن کیا تھا؟ کہ یہ میرے سگے سمبندھی. تو بھگوان نے کہا کس کے سگے سمبندھی ہیں؟ یہ تمہارے شریر کے، شریر کا سمبندھ ہے نا، آتما کا کیا ان سے سمبندھ ہے؟ آتما تو شاشوت ہے. جیسے ایک ٹرین کے اندر آپ جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے، تو ایک بوگی یا ایک آپ کا جو کمپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کے ساتھ میں اور بھی لوگ آتے ہیں، ابھی بیٹھتے ہیں تو کچھ مترتا ہو جاتی ہے، باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ یہ کیول چار گھنٹے کی مترتا ہے یا پانچ گھنٹے کی مترتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اپنی الگ جگہ جائے گا، وہ اپنی الگ جگہ جائے گا، اس میں کوئی شوق نہیں کرتا ہے. او ہو 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 ہو، پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ چار گھنٹے کے لیے اندھیرے ہیں، ٹاٹا بائے بائے. تو اسی پرکار سے ہم اس سمے اس جیون میں اس شریر میں ہیں، اور اس شریر کے سمبندھ میں ایک کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، کچھ ماں باپ ہیں، کچھ بھائی ہیں، کچھ متر ہیں، ہمارا ایک پرکار کا جاب ہے، ہمارا ایک پرکار کا گھر ہے، لیکن جیسے ہی شریر پریورتن ہوگا تو ایک دوسری استھتی ہوگی، دوسرے ماں باپ ہوں گے. تو بھگوان کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے جو دھیر ہے وہ ویتھت نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ دھیانترن تو ایسے ایسے ہونا ہے. یہ بھگوان سمجھاتے ہیں. تو کیسے اس کو سمجھے کہ ہمارا دھیانترن ہوتا ہے؟ اسی جیون میں ہم الگ الگ شریر بدلتے ہیں اور پھر بھی ہم نہیں بدلتے، ہم وہی رہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہوگا. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دیہانتر ہوتا ہے، ری انکارنیشن ہوتا ہے، وہ کیسے ایک کامن سینس کا تتھیہ ہے. اٹ از ناٹ جسٹ کیونکہ بھگوت گیتا میں کہا ہے اس لیے ہم کو ماتر مان لینا ہے، پر بھگوت گیتا میں بھگوان سمجھاتے ہیں ایگزامپل کے ساتھ کہ کامن سینس آپ سمجھ سکتے ہو، منشیہ سمجھ سکتا ہے، جانور نہیں سمجھ سکتا، لیکن کامن سینس سے منشیہ سمجھ سکتا ہے کہ یس آئی ایم ڈفرینٹ فرام باڈی. ہاؤ؟ تو ابھی آپ 15 سال پہلے کا یاد کیجیے. 15 سال پہلے آپ کیا شریر میں تھے؟ کیا شریر تھا آپ کا؟ آپ کے اسپیکٹس تھے؟ نہیں. 15-20 سال پہلے ہم بہت چھوٹے شریر میں تھے، اور ابھی دوسرا شریر ہے، پھر دھیرے دھیرے ورداوستھا کا شریر آئے گا. ایسے ایسے ہمارا شریر یہ بدل رہا ہے. تو کوئی بھی لوگ کہتے ہیں گرو ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بدل نہیں رہا ہے، گرو ہو رہا ہے، پر ایکچولی بدل رہا ہے، لیکن لگتا ہے جیسے گرو ہو رہا ہے. کیسے؟ جیسے لاسٹ ٹائم میں سمجھایا تھا سٹرڈے میں جو لوگ آئے ہوں گے، کہ جیسے فلم کیسے چل بنتی ہے، تو الگ الگ اسٹل فوٹوز ہوتی ہیں، اسٹل فوٹوز ہوتی ہیں الگ الگ، اور ان کو جب ریپڈ موشن میں گھمایا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ موشن میں ہے. تو اسی پرکار سے ये जो शरीर है इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं बनती हैं मॉलिक्यूल्स की, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये धीरे धीरे बदलते रहते हैं। जैसे आप ये हाथ लें, आपने देखा होगा कभी कोई घाव हो जाता है कुछ, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद में वो खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो गया? कि वो जो सेल्स हैं धीरे 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 वो चेंज हो जाते हैं। सेल्स भी चेंज होते हैं ये स्किन के, पर कहीं कहीं पर सेल्स चेंज नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं। मॉलिक्यूल सब जगह चेंज होते हैं, जो सेल जिससे बना है मॉलिक्यूल्स। तो 7 साल के अंदर, ये मॉडर्न मेडिसिन का तथ्य है कि 7 साल के अंदर शरीर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब चेंज हो, एवरी 7 ईयर्स वी आर हैविंग ए कम्प्लीटली न्यू बॉडी। लेकिन चेंज धीरे धीरे हो रहा है 7 साल के अंदर, इसलिए हमको परसीव नहीं होता है। जैसे कोई आदमी घर में माँ बाप होते हैं, हमको नहीं लगता है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन कोई रिलेटिव दुबई से आएगा 7 साल बाद, जब ग्रोइंग स्टेज में बच्चा है तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये वही बच्चा है, लेकिन माँ बाप को नहीं पता लगेगा क्योंकि ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। लेकिन दूर से आएंगे, अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए, बट पेरेंट्स मे नॉट और वी मे नॉट रियलाइज, क्योंकि धीरे हो रहा है, बट एक्चुअली वी चेंज। दैट्स व्हाई जो आदमी दूर से आता है, बहुत दिन बाद मिलता है, ही कैन इमीडिएटली से, अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। सो बॉडी इज चेंजिंग, लेकिन अंतकरण में हम सब क्या फील करते हैं अबाउट अवर पर्सनैलिटी? डू वी फील दैट वी आर डिफरेंट पर्सन टूडे एंड टुमारो मॉर्निंग वेन वी गेट अप, हु एम आई, न्यू पर्सन? डू यू फील लाइक दैट, अ न्यू पर्सन? हमारे पेरेंट्स हमारे साथ जो बिहेव करते हैं किस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं कि हम एक नए नए आदमी हैं। भले हम जो आदमी दूर से आया वो सोचता है अरे तुम बदल गए, लेकिन इमीजिएटली व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिम, अरे अच्छा तुम बदल गए, इमीजिएटली रियलाइज दैट द सेम पर्सन। बदल गए मीन्स शरीर बदल गया, अच्छा कैसे हो तुम अभी, इसका मतलब ही इज रिकग्नाइजिंग दैट इज आई एम टॉकिंग टू सेम पर्सन, सेम पर्सन। तभी तो पूछेगा अच्छा अरे बदल गया कैसे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ऐसे बात करने का कि तुम बदल गए। तुम मीन दैट सेम, वी आर टेकिंग द सेम, वही। तो इस तरीके से विथ कॉमन सेंस, वेरी सिंपल, बट कॉमन सेंस इज अ सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए लोग जनरली सोचते नहीं, अगर इसे कॉमन सेंस कि जैसे इसी जीवन में हम अनुभव कर रहे हैं कि हमारा शरीर तो बदल रहा है लेकिन हम नहीं बदल रहे हैं, तो फिर मरने पर हम क्यों मर जाएंगे? मरना मतलब क्या है? ये शरीर मरेगा। तो अभी तक तो कितने शरीर मर चुके हैं हमारे, आपके कितने शरीर मर चुके हैं? नहीं, आपकी एज कितनी? 21। तो 7 साल में एक शरीर मरा, तो कितने शरीर बदल चुके आप? 3 शरीर तो मिनिमम बदल चुके, और जब हम माँ के गर्भ के अंदर होते हैं दैट्स फर्दर। तो इस तरीके से हम इसी जीवन में कितने सारे शरीर मर चुके हैं, लेकिन हम शरीर के मरने पर वी रिमेन। तो फिर कॉमन लॉजिक क्या कहता है? जब एंड मोमेंट में जब ये शरीर जाएगा जो एग्जिस्टिंग है, जब ये मरेगा तो फिर हम क्यों मर जाएंगे? तब वी शुड एग्जिस्ट देन ऑल्सो। जब अभी तक नहीं मरे शरीर मरने पर, तो अभी क्यों मरेंगे? आर यू फॉलोइंग द लॉजिक? तो ये सिंपल लॉजिक से भगवान समझा रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर हम शरीर होते तो हम भी मरते, लेकिन हम नहीं मर रहे, दैट मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, हम आत्मा। तो आप सोचिए धीरे धीरे, अभी तो आपको थ्योरेटिकल ये नॉलेज हुई है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, कुछ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ समझ में आया है, और धीरे धीरे यदि हम ये प्रैक्टिस करेंगे भगवद्गीता को, तो वी विल बी एबल टू रियलाइज मोर क्लियरली दैट वी आर एक्चुअली सोल, एंड एट वन पॉइंट वी विल बी एबल टू सी परसीव सोल। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन क्या मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं? मैं आपके शरीर को देख रहा हूँ, आप मेरे शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा, आप आत्मा और ना ही आप मेरे को देख पा रहे। क्यों? क्योंकि ये जड़ आंखें हैं, इंद्रियां हैं, ये जड़ हैं, इनकी कैपेसिटी नहीं है आत्मा को देखने, इसलिए केवल शरीर देख सकता है, भौतिक तत्व देख सकता है। तो लेकिन बाय दिस प्रोसेस, भगवद्गीता प्रोसेस, वी कैन कम टू सी आत्मा और फिर परमात्मा, दिस ऑल पॉसिबल। तो जब आप सोचिए, जब आप जैसे से आप इस ज्ञान में स्थित होंगे कि अरे आप तो ये शरीर है ही नहीं, आप तो आत्मा है, तो आपके जीवन की जितनी समस्याएं आपने बताई और जितनी सोच सकते हैं उसका क्या होगा? उन समस्याओं का दे विल नॉट एग्जिस्ट, देन वॉट इज द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग दैट? दे विल नॉट एग्जिस्ट, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यही वास्तव में भगवद्गीता का आधारभूत ज्ञान है कि जो हम ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लेके बैठे हैं और अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, शरीर के प्लेटफॉर्म पर रह करके अपने को शरीर मानते हुए ऐसे रहते हुए आप कभी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आदमी सपना देखता रहेगा तब तक वो एग्जाम का डर, तब तक वो परेशान करेगा। आप बोले उसको हम पानी दे दें लेकिन आपने देखा होगा सपने की जो प्रॉब्लम होती है तो यू नो बैड ड्रीम्स मीन बैड ड्रीम्स, इट विल रिमेन बैड बैड बैड, यू कांट हेल्प इट, क्योंकि होल प्रीमाइस इज बैड, क्या करें कहाँ सॉल्व करें, सब तरफ से नॉट पॉसिबल। तो जब तक आदमी ड्रीम में है, सपने में है, तब तक उसका सोल्यूशन है ही नहीं। लेकिन सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। क्या है सिंपल सोल्यूशन? जस्ट कम आउट ऑफ ड्रीम, जस्ट कम टू रियलिटी, दैट्स इट। तो उसी प्रकार से अगर हम शरीर के प्लेटफॉर्म पर रह करके कि हम शरीर हैं, इस प्लेटफॉर्म पर रह करके अपनी समस्याएं, परिवार की समस्याएं, समाज की समस्याएं, देश की समस्याएं, ह्यूमैनिटी की समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, ओजोन समस्या, किसी भी तरह पहुंचे, वो सब समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन रहेंगे यही बॉडी के प्लेटफॉर्म पर, तब तक इनका कोई समाधान नहीं है। और इसीलिए हम पाते हैं कि जब इसके बारे में सोचते हैं तो माइंड बॉगल हो जाता है, वी जस्ट कांट थिंक वे आउट, क्योंकि हर प्रॉब्लम एक दूसरे से बिल्कुल इंटरलेटेड दिखती है। व्हेन आई वाज यंग दिस पॉपुलेशन प्रॉब्लम, क्या होगा ये पॉपुलेशन बढ़ती आ रही क्या होगा एक दिन धीरे धीरे जमीन तो उतनी है, क्या होगा इसका पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, नो सॉल्यूशन। और हर प्रॉब्लम आप देखिए तो सब लोग क्या बोलते हैं, भाई ये महंगाई क्यों बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब समस्याएं जाके अंत में पॉपुलेशन आती है। देन आई शुड थिंक तो फिर पॉपुलेशन को कैसे कैसे रोकी जाएगी पॉपुलेशन, तो एक तो तरीका है मार दो आतंकवादी, उसमें हेल्प कर रहे हैं लेकिन दूसरे को मारते ठीक रहता है, अपने को मारते हैं, अपने संबंधी को मारे तो मुश्किल होती है, इसलिए दैट ऑप्शन इज नॉट वायबल, वो ऑप्शन वायबल नहीं मान लिया जाए। तो बिग बिग प्रॉब्लम्स एंड वी डोंट फाइंड सोल्यूशन आउट ऑफ इट, बट बिकॉज वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग द सेम रॉन्ग प्लेटफॉर्म, ड्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एंड देयर इज नो सोल्यूशन। इसलिए भगवान बड़े सिंपल शब्दों में कहते हैं भगवद्गीता में कि ये जो भौतिक जगत है दुखालयम अशाश्वतम है। ये जो भौतिक जगत, यानी कि जब तक हमारी चेतना है कि मैं ये शरीर हूं, मैं इस भौतिक जगत का अंग हूं, शरीर की आवश्यकता मेरी आवश्यकताएं हैं, शरीर का दुखी मेरा दुख है, शरीर के सुखी मेरे सुख हैं, इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि, मैं देह हूं इसको इम्पोज करना अपने ऊपर। जब तक हम इस बुद्धि में रहते हैं, अर्थात जब तक हम इस भौतिक संसार में रहते हैं, तब तक हम क्या अनुभव करेंगे, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का घर है और अशाश्वतम नश्वर। तो आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? भगवान ने भगवद गीता में सिंपल शब्दों में कह दिया है कि इस ये भौतिक जगत, यानी कि जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तब तक हम ये दो चीज अनुभव करेंगे कि ये भौतिक जगत आपको दुख का घर बन रहेगा आपके लिए और नश्वर रहेगा, टेम्परेरी रहेगा। अब आप एनालाइज करके देख लीजिए हर चीज टेम्परेरी है कि नहीं बॉडी के रिलेशन में। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग विच इज परमानेंट इन रिलेशन विद दिस बॉडी? हमारे कोई संबंधी के साथ हमारा संबंध नैतिक नित्य रह सकता है? हमारी जो शक्ति है जीवन की, अभी हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी पर तो एक साथ चार चार सीढ़ी चढ़ते हैं और जब बूढ़े लोगों को देखते हैं तो हंसी आती है, पर क्या ये शक्ति रहेगी? नहीं, सब चीज बदल जाएगी, सब चीज टेम्प्रेरी इस शरीर के संबंध। ये बहुत ही संसार भी आप देखते हैं, आज मोबाइल का जमाना है, पहले मोबाइल नहीं था और फिर थोड़े दिन बाद मोबाइल के बाद कुछ और आए, विदाउट एनी फिलोसफी वी कैन जस्ट कम टू दिस कंक्लूजन, डेफिनेटली सम न्यू थिंग विल कम, इट विल नॉट बी देयर वन डे, सम न्यू थिंग विल कम, हर चीज चेंज हो गई। तो ये जो भौतिक जगत है ये नित्य नहीं है, हमेशा बोलते हैं, और दुखों का घर है। कितने बड़े बड़े लोग आके चले गए, अमीर बहुत थे, बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हिस्ट्री में आज तक ऐसा हुआ जिसको जीवन की जिसने सब समस्याओं का समाधान भौतिक प्लेटफॉर्म पर रहकर, बॉडीली प्लेटफॉर्म पर रहकर कर पाया? कैन यू थिंक ऑफ एनी वन इन द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एनी वन? या आज के समाज में आपको लगता है धीरू भाई अंबानी के लड़के अनिल अंबानी और दे आर द टॉप नाउ वर्ल्ड में टॉप्स, सो डू यू थिंक दैट दे हैव नो प्रॉब्लम इन लाइफ? नो, एवरीबॉडी इज डिफरेंट प्रॉब्लम्स. जो आदमी कार में चलता है उसको लगता है ये जो सड़क पे चलने वाला आदमी है कितना सुखी है, इसको कोई टेंशन नहीं है, अपना सीधा साधा जीवन है, काम करेगा पैसा देगा. अरे यहाँ इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें इतने सारे वर्कर्स हैं, उनकी स्ट्राइक होती है और ये होता है. और जो सड़क पे चलने वाला वो कार वाले को देख के रखता है कितना अच्छा जीवन, कार में घूम आराम. और जो कार में बैठा है उसको इतनी सारी चिंता है, कार में बैठने का तो आनंद तो गायब ही रहता है, तो और थाउजेंड प्रॉब्लम्स है. वैसे ही हर एक आदमी दूसरे को देख करके सोचता है, दैट इज दैट क्वेश्चन इज गुड. इसको हिंदी में बोलते हैं दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल पर सुहावने होते हैं सब, कैसे लगता है. सो बट वॉट इज रियलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज थिंक. हम लोग सोचे हैं वैन आई बिकम लाइक हिम माई लाइफ विल बी वेरी हैप्पी, बट देर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट दैट पोजिशन कमिटिंग सुसाइड, फ्रस्ट्रेटेड कंप्लीटली विद दिस पोजिशन. तो फिर आपका चांस क्या है कि वैन यू विल रीच दैट पोजिशन यू विल बी हैप्पी? नो चांस. देर आर सो मेनी फिल्म एक्टर्स, फिल्म एक्ट्रेस और पॉलिटिशियंस, बिग मैन, दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ. सो अगर आप लॉजिकली देखें तो ये बात तथ्य है कि नहीं कि ये बहुत ही जगह दुखालय है, क्योंकि सबसे बड़े दुख तो रहेंगे ही जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी और संघर्ष, इस शरीर को टिकाने का संघर्ष. डार्विन्स प्रिंसिपल क्या है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एग्जिस्टेंस. तो जब तक इस भौतिक जगत में है, जब तक ये शरीर है, तो शरीर टिकाने के लिए स्ट्रगल तो होगा ही. दो कुत्ते हैं, देन दे विल फाइट, जो भी पावरफुल होगा माइट मेक्स राइट. सो दिस स्ट्रगल इज गोइंग टू बी देयर, एंड स्ट्रगल मीन्स एंग्जाइटी. कैन यू एक्सपेक्ट? स्ट्रगल है बट वेरी नाइस स्ट्रगल, एवरीबॉडी इज वेरी पीसफुल. स्ट्रगल मीन्स एंग्जाइटी, करेक्ट? एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होगी ही होगी. दैट मीन्स फॉर श्योर देयर इज नो एंड टू एंग्जाइटीज, परफेक्ट सॉल्यूशन टू एंग्जाइटी स्टिल विल रिमेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बॉडी, कि मैं शरीर, तब तक इन चिंताओं का अंत नहीं. इसे हमारे शास्त्रों में बताया गया, चिंताम अपरिमेयान्ते, अनलिमिटेड चिंता, अनलिमिटेड चिंताएं रहती. जिन्होंने भी गृह मेधिना, जिन्होंने भी अपने कोई शरीर मान लिया है और शरीर संबंधी चीजों को अपना मान लिया है, वो हमेशा जन जन्मांतर चिंताओं में रहेंगे ही रहेंगे. एनीबडी हू इज डिसएग्रीइंग विद मी, योर एक्सपीरियंस यू कैन सी एवरीवेयर अराउंड, इट हैज टू बी. दिस इज भगवद गीता, दिस इज द नॉलेज. वन शॉर्ट स्टेटमेंट पूरे जगत का एनालिसिस है. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस नॉलेज का सहारा उठा करके, सहारे से ही कैन वेरी क्विकली अंडरस्टैंड एनालाइज द होल वर्ल्ड एंड देन डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. तो सबसे पहले तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि दुखाले मशासन, तो डोंट ट्राई टू जस्ट कीप ऑन स्ट्रगलिंग. एक आदमी है कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, काटे जा रहा है, घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, पसीने 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 हो रहा है, कट ही नहीं रहा है. एक दूसरा आदमी आ गया उसका फ्रेंड, अरे भाई मेरी बात सुनो, डोंट डिस्टर्ब, मेरे को ये काम खत्म करना है. काटे जा रहा है और कुल्हाड़ी जो है वो ठुंटर है, उसमें ब्लेड नहीं, उसकी शार्पनर नहीं, ठुंटर है और काटे जा रहा है. उसको टाइम नहीं है उसको फ्रेंड को सुनने का, उसका फ्रेंड उसको बताना चाहता है कि भाई ये कुल्हाड़ी को धार लगाओ तो कटे, पर वो नहीं, टाइम नहीं है सब सोचने का, मेरा काम ये है. तो इज इट इज फुलिशनेस. थोड़ा रुको, जब नहीं कट रहा है तो सोचो थोड़ा, क्यों नहीं कट रहा? उसे काटे जा रहे, कट नहीं रहा है, क्यों काटे जा रहे? दैट मीन्स यू आर फुलिश, यू आर फूल. इंटेलिजेंट मैन यू थिंक इट्स नॉट हैपनिंग, समथिंग रॉन्ग, व्हाट्स दैट? ऐसे ही यू आर इंटेलिजेंट पीपल, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर सपोज टू बी इंटेलिजेंट. तो सबको सोचना चाहिए, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, हिटलर, बिल क्लिंटन, नेहरू, गांधी जी, तो सभी लोग तो अलग अलग पोजीशन में थे, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन में भी थे, बट एवरीबडी वॉज अनहैप्पी, एवरीबडी वॉज फ्रस्ट्रेटेड इन वन वे अदर, एंड अल्टीमेटली एवरीबडी डाइड. सो जब आज तक किसी का इस प्रकार से जीवन के संघर्ष में सब फ्रस्ट्रेट हुए हैं, सो वॉट चांस डू आई हैव दैट आई विल बिकम परफेक्टली हैप्पी फॉलोइंग द सेम वे एज दे डिड? जो भीड़ होती है, जो लीडर लीडर है वो गड्ढे में गिरती है, उसके पीछे पीछे सब एक एक करके वहीं गिरती है। तो हम लोग एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किए जा रहे हैं अपने एंसेस्टर्स को या बाकी सामान्य लोगों को, एग्जैक्टली सेम। क्या है सबका जीवन, सामान्य रूप से क्या है सबका जीवन, रोते रोते जन्म हो जाता है। ओके, उसके बाद पहले तो 4-5 साल तो पता ही नहीं होता है कौन है, रोते रोते ही, और उसके बाद फिर खेलते हैं कूदते हैं, कुछ आवाज़ निकालते हैं, अलग अलग खेल करते हैं, और माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे 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 तुतलाती भाषा में, एंड वी डोंट नो एंड वी थिंक दैट ओके। और फिर उसके बाद फिर एक दिन आता है जब हमको स्कूल भेजा जाता है, जब रोते हैं बड़ा बड़ा बैग लेकर के स्कूल, और फिर शुरू हो जाता है बड़े बड़े बैग और पढ़ाई और एग्जाम्स, नर्सरी प्री नर्सरी, ये तो नर्सरी से ही पहले आ गए, पता नहीं वो कहाँ जन्म तक नहीं ले जाए, बर्थ इन द स्कूल। अब मेरी पहले किताब है, क्योंकि अभी तो कंपटीशन बहुत हैवी हो गया, अभी बचपन से ही पढ़ना पड़ेगा, और तभी स्त्री और आगे ना चले जाए, मदर इज प्रेगनेंट, तभी से लेसन शुरू हो जाए, प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम्स। तो ऐसे करके फिर 12वीं तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, बिग हेड है उधर, पेरेंट्स की इच्छा है, ओ डॉक्टर इंजीनियर बना है, नाक समाज में नाक कट जाएगी हमारी, अरे भाई मैं क्या करूँ, सीट तो 5 है, देने वाले 1000 हैं, क्या करूँगा मैं, सो मेनी एंग्जाइटी, देन जॉब एंग्जाइटी, एंड देन मैरिज, एंड देन सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड सो मेनी एंग्जाइटीज, एंड देन और फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु, सेम ओल्ड स्टोरी। एनी चेंज, एवरीबडी गोइंग टू द सेम ओल्ड स्टोरी। तो इंटेलिजेंट मैन शुड थिंक व्हाट्स हैपनिंग, एवरीबडी इज गोइंग जस्ट टू द सेम साइकिल एंड एवरीबडी इज फ्रस्ट्रेटेड, सो हाउ इज इट दैट आई विल गो थ्रू द सेम साइकिल एंड आई विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, सेम फ्रस्ट्रेशन। आप कभी अपने दादाजी को देखिए, आई हैव एक्सपीरियंस, जब बूढ़े लोगों से मिलते हैं जो बहुत मरने की तैयारी में है, यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम, 5 मिनट बाद रोने लगते हैं, दे आर सो मच इन ट्रबल, दे आर सीइंग दे आर यू नो गोइंग टू डाई, नोबडी टॉक्स टू देम इन जनरल, कई बार ऐसा उनको अलग कर देते हैं, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सो दे फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड वेरी एम्प्टी ऐसे। तो जैसा उनके साथ हुआ है वैसे ही कुछ हद तक सबके साथ होगा, या कुछ नहीं सीख जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, बुद्धिमानता इसमें है कि हम जगत को एनालाइज करें और सोचें कि हमें अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने की जरूरत है। जस्ट डोंट कंटिन्यू स्ट्रगलिंग 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 स्ट्रगलिंग, बिकॉज स्ट्रगलिंग इन दिस वे इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। So therefore we should be alert. So is there another way? Is there something different? Where is the solution for this struggle for existence? ये संघर्ष क्यों? ये क्यों संघर्ष है? ये क्यों? ये बहुत ही जगत में ये सब संघर्ष क्यों मनाए? किसने मनाए? Why I am struggling? Why I have to struggle? I don't want to struggle. Who wants to write exams? Who wants to pass? And who wants to enter into this tough competition? And nobody. Nobody. बट स्टिल एवरी वन इज फोर्स्ड। कोई बुरा होना चाहता है, कोई मरना चाहता है, कोई बीमार होना चाहता है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी विवश है। सो इंटेलिजेंट आदमी क्या सोचता है, आखिर ये है ही क्यों, ये सब स्ट्रगल है ही क्यों? नोबडी वॉन्ट्स, आई डोंट वॉन्ट, माई नेबर डोंट वॉन्ट, नोबडी वॉन्ट्स, देन व्हाई दैट ऑल ऑफ अस आर फोर्स्ड टू अंडरगो दिस स्ट्रगल एट ऑल। जब व्यक्ति ऐसा प्रश्न करता है तब से वो मानव कहलाता है, मनुष्य। उससे नीचे वो मनुष्य नहीं है, उससे नीचे वो जानवर। जैसे जानवर होता है स्लॉटर हाउस के अंदर, लाइन लगी, एक एक करके सबको अभी काटा जाए, तो एक जानवर काट रहे हैं और उसके पीछे जो लाइन में खड़े हैं वो घास खा रहे हैं। उनके अंदर इतनी चेतना विकसित नहीं है कि इस समय घास खाने से क्या फायदा होगा, अभी मरने का टाइम आ गया, हो सकता है अगर बच सकूं तो भागूं, बट दे आर सो स्टूपिड बिकॉज देयर ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड, कॉन्शियसनेस नॉट सो डेवलप्ड। तो ये डिफरेंस है जानवर में और मनुष्य। तो इसको हमारे शास्त्र में क्या कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुधर निर्णाना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुधर निर्णाना। चार चीज जो है वो तो कॉमन है जानवरों में और आदमी में, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, एवरीबडी इज डूइंग। नाउ विशेषता क्या है मनुष्य की, कि मनुष्य ये प्रश्न कर सकता है व्हाई दिस स्ट्रगल एट ऑल, नॉट दैट इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ओ अभी कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, अभी ये सॉल्व, व्हाई प्रॉब्लम्स एट ऑल, व्हाट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम्स, व्हाई डू आई हैव दिस शुगर, हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, हु हैज मेड इट, व्हाई ही हैज मेड इट, इज देयर अ क्रिएटर, इफ नॉट देन हाउ एवरीथिंग हैज कम, एंड इफ यस देन व्हाई ही हैज मेड एंड हाउ ही हैज मेड, दीज इंक्वायरीज, इसको बोलते हैं तत्व जिज्ञासा, ये इंक्वायरी करना मनुष्य की विशेषता है, ये जानवर नहीं कर सकते, ये केवल मनुष्य कर सकता है, और इसीलिए कहा गया है कि जो मनुष्य ये इंक्वायरी नहीं करता है, ही इज द्विपाल पशु, ही इज जस्ट एनिमल इन कॉन्शियसनेस बट हैविंग टू लेग्स इंस्टेड ऑफ फोर, ये डिफरेंस, तो इसीलिए कहा गया है पराभावस्तावद अबोध जाता यावत न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत क्रियास्तावत इदम मनोवई कर्मात्मकम ये न शरीर बंधा, आप जो कुछ भी जीवन में कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, आपका बिजनेस है, जो भी है, इट्स फेलियर, इट्स अ रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट, आप सब लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं लोग, इट्स फेलियर, आई एम अ फेलियर, लेकिन मैंने तो देखा ना बोर्ड में दिखाया था, यू पास दिस एग्जाम नाउ यू आर अ सक्सेस or you get this and then you are success. No, our shastra says failure. Everything is failure. My monthly package is 1 lakh rupees. Failure. I am working in topmost MNC. Failure. I am a topmost businessman. Failure. Ambani group. Failure. Cricketer. Failure. पला भाव स्थावत फिर कब तक यावत न जिज्ञासत आत्म तत्वम, जब तक हम ये तत्व ज्ञान के विषय में जिज्ञासा नहीं करते हैं तब तक फिर, क्योंकि एवरीथिंग एल्स विल एंड विद दिस बॉडी, योर बिजनेस विल एंड विद दिस बॉडी, व्हाट एवर बिजनेस, स्टडिंग बिजनेस, जॉब बिजनेस, फैमिली बिजनेस, दिस बिजनेस, दैट बिजनेस, एवरीथिंग इज ओवर विद बॉडी, एंड देन you will not even know where you are going and nothing definitely is going, no, nothing is going to come with you. You are a crorepati now aur jab marenge, yeah, now you are a IBM aur jab dobara jan hoga to fir a e e wahi se padhna padega, aisa nahi ki last time I was IBM bhai, no, again wo rote rote jan hoga fir dobara se school mein a b c d again same steps, so this is we have to think ki ये जो पूरा चक्र है, ये जो वो सब फेलियर है, क्योंकि सब टेम्परेरी, और आप हम अंतकरण में चाहते हैं इटर्नल, इटर्निटी, नित्यता चाहते हैं, हम सब नित्यता चाहते हैं, वी डोंट वांट टू डाई, वी वांट दैट आवर पेरेंट्स शुड ऑलवेज बी विद अस, आई शुड रिमेन इन माय गुड पोजीशन ऑलवेज, सो ये क्या दिखाता है कि ओरिजिनली वी आर इटर्नल, तभी तो सबके अंदर ये इच्छा है, सबके अंदर ये इच्छा कैसे है, क्योंकि वी मस्ट बी हैविंग दिस ओरिजिनल नेचर, हमको प्यास लगती है, पानी है, पानी है, प्यास लगती है, तो उसी प्रकार से हमारे सबके अंदर यूनिफॉर्मली, जानवर हो के आदमी हो, सबके अंदर इच्छा है कभी ना मरे, दैट इज वी वॉन्ट टू बी इटर्नल, वी वॉन्ट टू रिमेन ऑलवेज, दैट शोज दैट वी मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, बिकॉज वी वेरी क्लियरली नो, हम सब जानते हैं कि शरीर तो भी मरेगा, लेकिन फिर भी हम सब चाहते हैं हम अमर रहे, ये दिखाता है कि हम इस शरीर से अलग होने चाहे, लेकिन इस भौतिक जगत में हमें जिससे भी संपर्क में आते हैं वो अनित्य, तो इसलिए बुद्धिमानता यानी कि मनुष्यता शुरू होती है जब व्यक्ति ये प्रश्न करता है कि ये जीवन क्या है, तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव इन योर लाइफ सो फॉर गॉट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, व्हाट इज एक्चुअली दिस होल वर्ल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव thought about this, a few of you, बचपन में जब छोटे थे, जब कभी तारे चांद तारे देखते थे, ये सब क्या है, कौन है वहां, किसने बनाया, so some point this question comes, और अभी तक नहीं आया है so now it should come at least, अभी तक यदि नहीं किया है तो अभी से शुरू करना चाहिए, तो भगवद गीता का प्रारंभ यहां से होता है, जब हम ये प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, जब हम समझते हैं कि जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम कमा रहे हैं इत्यादि, दैट्स ऑल राइट, वो शरीर की आवश्यकताएं हैं, बट अल्टीमेटली आई हैव टू नो दिस सब्जेक्ट मैटर कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये जगत क्या है। मनुष्य जीवन में जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए। बाकी जो शरीर को देखभाल करना है वो तो जानवर भी करते हैं, तो उसके लिए समय चाहिए, करना है, दैट्स ऑल राइट, उसमें मनाही नहीं है, क्योंकि शरीर का देखभाल करना जरूरी है, तभी हम ये लाइफ में आत्म साक्षात्कार का रास्ता तय कर सकते हैं, तो इसमें मनाही नहीं है। लेकिन शरीर देखभाल किस लिए? सो दैट दिस बॉडी कैन बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस सब्जेक्ट मैटर। अगर आप ऐसा कर रहे हैं देन यू आर कॉल्ड ह्यूमन बींग्स, अदरवाइज वी आर नॉट ह्यूमन, वी आर एनिमल। और फिर मृत्यु के बाद में शास्त्र के अनुसार यू विल बी गिवन ए बॉडी ऑफ ए एनिमल, बिकॉज यू वेस्टेड ह्यूमन बॉडी, प्रेशियस ह्यूमन। ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनि में जाने का मिली है, किसने मिली है? जैसे किसी बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, उसको कार दी गई, किस लिए? कि वो अपना ऑफिस का काम अच्छे से कर सके। अभी ऑफिस में जाए नहीं और कार लेकर के कोड़े किनार और सब जगह घूमने लगे तो क्या करे कंपनी? टेकआउट दिखा, उसको जॉब से नीचे निकालो, इज नॉट, इट डजंट डिजर्व इट। तो उसी प्रकार से हमको एक शरीर मिला है मनुष्य जीवन, जिसमें हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य जीवन को ये प्रश्न का उत्तर ढूंढने में नहीं लगाए और केवल खाना कहाँ है, खाना कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है, पैसा किसने कमाना है, आहार निद्रा भय मैथ, ये चार चीज के लिए पैसा कमाना है। तो यदि हम मनुष्य जीवन में मिली बुद्धि का उपयोग केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही करते रहेंगे तो फिर क्यों हमें मनुष्य जीवन दिया जाए? फिर जानवर का शरीर मिलेगा, क्योंकि यू जस्ट डिजर्व दैट। सो देयरफॉर ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मनुष्य जीवन जिम्मेदारी का जीवन, बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हमें वंस फॉर ऑल वी हैव टू नो रियलिटी, व्हाट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, आखिर ये सब क्या है, सच्चाई क्या है। और ये सब प्रश्न हमारे मन में आए हैं मनुष्य जीवन में, तो इनका उत्तर भी मनुष्य जीवन में प्राप्त करना संभव है। जब प्रश्न होता है तो उसका उत्तर भी संभव। जानवरों में ये प्रश्न ही नहीं उठता और इसलिए उनके लिए उत्तर समझने की चांस नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन में ये प्रश्न सबको उठता है। कई लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, कई लोग बोलते हैं भगवान है, लेकिन भगवान जो विषय है वो तो सबके दिमाग में आता ही है ना, चाहे है कि नहीं है वो दूसरी बात है, पर भगवान कोई विषय तो दिमाग में आता ही है, तभी तो उसके बारे में दो पक्ष हो सकते हैं कि है कि नहीं है। सो दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड गॉड। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का केंद्र होना चाहिए टू अंडरस्टैंड गॉड। कई लोग सोचते हैं जो करीब बात कर रहे थे, ये क्या महत्वपूर्ण है जानना हु इज गॉड, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या फर्क पड़ेगा कि पैराडाइम शिफ्ट, अभी हम एक इल्यूजन ड्रीम में जी रहे हैं दैट आई एम अ बॉडी, और उस ड्रीम में हम देख रहे हैं कि देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड कि ये ड्रीम से बाहर निकलो, वास्तविकता क्या है, अंधेरे में रहकर के सॉल्यूशन नहीं मिले, लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए, उससे सब चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे अंधेरा है अभी ये सब जो टेम्परेरी ये जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं जो सन से ही एनर्जी ले रही हैं वो भी नहीं हो तो अंधेरे में सब कुछ कंफ्यूजिंग दिखता है ना, दिखता नहीं रास्ता कहाँ है, खड्डा कहाँ है, डोर कहाँ है, कुछ दिखता नहीं, अच्छा सामने आदमी भी नहीं दिखता, अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ सब कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग कन्फ्यूजिंग। और जब सूरज निकलता है और रात को डर भी लगता है, चोर का, भूत का, करेक्ट। और जैसे ही सूरज का प्रकाश निकलता है सुबह तो आप देखिए तो एकदम उनसे वो सब डर जैसे गायब हो जाता है। रात को आप जाइए कहीं अकेले जाने में आपको डर लगे, और जैसे दिन निकलेगा तो एकदम खाई से पूरी शक्ति है। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ प्रकाशमान है, अंधकार नहीं। तो अंधकार से निकलना, प्रकाश में आना, ये सभी समस्याओं का समाधान है। इल्यूजन से निकल करके रियलिटी में आना वो समस्याओं का समाधान है। तो भगवद गीता क्या है? हमारी इल्यूजन से हमको निकाल करके, अज्ञानता से निकाल करके हमको प्रकाश में लाती है, रियलिटी, रियल नॉलेज हमको देती है। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग अंधकार से प्रकाश में आने का प्रयास करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहला विषय है जो हम देखेंगे कि भगवान इस भौतिक जगत के बनाने के पीछे क्या कोई व्यक्ति, व्यक्ति से मतलब जिसकी बुद्धि हो, जिसने कुछ सोच करके इस सृष्टि को डिजाइन किया, जो इस सृष्टि का पालन कर रहा हो, जो अलग अलग लॉज हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल उसको डायरेक्ट कर रहा हो, क्या कोई ऐसा व्यक्ति यानी सेंटिएंट बीइंग, सेंटिएंट बीइंग मींस ए पर्सनैलिटी लाइक यू एंड मी, यू एंड मी, वी कैन थिंक एंड वी कैन प्लान एंड वी कैन प्रोग्राम एंड वी कैन क्रिएट, जैसे ये घड़ी. सो इंटेलिजेंट पर्सन डिजाइन फर्स्ट ही थॉट देयर शुड बी अ वॉच विच कैन टेल अस टाइम. फर्स्ट ही शुड हैव थॉट एंड देन ही यूजिंग हिज ब्रेन ही डिजाइन इट एंड देन सो मेनी थिंग्स वेंट इन टू डिजाइन इट एंड अल्टीमेटली दिस प्रोडक्ट केम आउट. सो क्वेश्चन इज, इस सृष्टि के पीछे क्या कोई ऐसा ही व्यक्तित्व जो सोच सकता है, जो प्लान कर सकता है, जो डिजाइन कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति है, या ये सब अपने आप डेड मैटर अपने आप आपस में इंटरेक्ट करके सब कुछ बन गया है. जीवन के लक्षण अपने आप जड़ पदार्थों में मिलकर के अपने आप से जीवन के लक्षण प्रकट हो गए हैं, या किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इन जड़ तत्वों को लॉज के अनुसार मिलाया है, बनाया है, अलग अलग ग्रह बनाए हैं, अलग अलग सृष्टि बनाई है, ये शरीर बनाए हैं, या ये सब अपने आप जड़ पदार्थ जस्ट बाई फॉलोइंग द लॉज ऑफ नेचर अपने आप जीवन उत्पन्न हो गया है, और जीवन उत्पन्न होने के बाद धीरे धीरे बुद्धि और बुद्धि के विकास से अल्टीमेटली अर्थात आर देयर टू थिंग्स लाइफ एंड मैटर और इज देयर ओनली वन थिंग मैटर अल्टीमेटली, दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, दिस इज द क्वेश्चन. सो एट थर्टी ओके, वी विल डिस्कस दिस मोर इन डिटेल टुमारो इस विषय के ऊपर. तो आपको जो किताब दी है गीता साहब, तो आप उसको जरा शुरू के कुछ पेजेस पढ़िए, जिससे कि हम कल जब डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक को तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको डिस्कस कर सकते. प्लीज थिंक अबाउट इट, कम विद ऑल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि ये वैज्ञानिक विचार है बहुत बड़ा जो आज सब जगह समाया हुआ है. कोई अनपढ़ होगा वो भी इसको इसी से प्रभावित होगा, भले ही स्कूल में नहीं गया होगा. अरे भगवान भगवान किसने देखा है, किसने देखा है, ये सब तो सब बोलते हैं, ये अपना बुरा है, ये प्रकृति सब कर रही है, प्रकृति सब अपने आप, प्रकृति के नियम सब अपने आप कर रहे हैं काम, इसमें कोई पीछे उसके पीछे कोई डायरेक्शन, कोई बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं है. जड़ पदार्थ अपने आप लॉज फॉलो करके अपने आप उससे सब कुछ बन गया है. So tomorrow we are going to have this discussion. Is it right? Or is there an intelligent man behind all this creation? It's a very important question, isn't it? क्योंकि यदि कोई भगवान जैसी कोई चीज है, कोई व्यक्ति है, then immediately that means किसी purpose से उसने इसको बनाया है, और हमको वो purpose पता नहीं है. पता है किसी? पता नहीं. अच्छा, बिना purpose किए, बिना purpose समझे हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? फेलियर, फ्रस्ट्रेशन. तो फिर बहुत जरूरी हो जाएगा हम लोगों के लिए वो जानना कि वो पर्पस क्या है, क्यों हम यहाँ हैं, क्या करना है. तो और अगर कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, तो फिर और बहुत सारे प्रश्न हैं. तो फिर अगर सब कुछ केमिकल्स ही है, देन वाई टू लिव एट ऑल, वाई टू अंडरगो दिस स्ट्रगल, वी आर जस्ट केमिकल्स, हम लोग केवल केमिकल्स हैं. तो फिर एक मृत शरीर और एक जीवित व्यक्ति, उसमें क्या अंतर है? जब कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको इतना बड़ा क्यों समझाता है? ओह मर्डर, मर्डर मींस व्हाट? ही चेंज सम केमिकल्स फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मर्डर. सम सेल्स वर चेंज्ड, कुछ मॉलिक्यूल्स तोड़ दिए, कुछ यानी कि जो कार्बन है वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड मर्डर. सो व्हाट इज सो बिग अबाउट मर्डर? वो मर्डर. सो इज इट लाइक दैट? सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. हर चीज यहीं से शुरू होगी. हमारा पूरा जीवन का दृष्टिकोण इस पर निर्धारित है, इस विषय के ऊपर कि क्या भगवान है या नहीं. तो ये है पैराडाइम शिफ्ट का शुरुआत. जब हम इन विषयों को धीरे समझेंगे देन वी विल सी कि पूरा जगत को देखने का दृष्टिकोण पूरा एक नया दृष्टिकोण समझेंगे. सो विल स्टॉप हियर नाउ. एनी क्वेश्चंस आज के टॉपिक के संबंध में? किसी कोई प्रश्न है?
कैसे मान लें आत्मा और बॉडी अलग है? मैं एक टाइम मान लेते हैं कि आत्मा बॉडी से अलग है. तो अगर सपोज कोई स्विच चुभा दे तो दर्द तो होता है.
यस.
तो फिर कैसे मान लें आत्मा और बॉडी अलग है? फॉलो कैसे करें?
अच्छा, आपका एक कंप्यूटर है पीसी, आपने उसमें सब डाटा उसके अंदर फीड कर दिए, ठीक है? आपके बर्थडे और आपके बिजनेस के सब डाटा, सबके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एवरीथिंग यू हैव फेड इन दैट. अभी वो कंप्यूटर पीसी एक दिन बिगड़ जाता है, आप उससे प्रभावित होंगे? नहीं होंगे. आपका पूरा बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, एवरीथिंग विल शट डाउन. प्रभावित होंगे ना? बट एक्चुअली कंप्यूटर से आपका कोई संबंध नहीं है. इट्स सेपरेट, कंप्लीटली सेपरेट. बट बिकॉज यू आर वर्किंग थ्रू कंप्यूटर, यू आर वर्किंग थ्रू कंप्यूटर, सो कंप्यूटर्स फंक्शनिंग विल अफेक्ट यू. जैसे आवाज जो आप तक पहुंच रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्पीकर. तो आवाज ओरिजिनली स्पीकर से आ रही है. रियल स्पीकर आवाज प्रोड्यूस कर रहा है? मैं कर रहा हूं. लेकिन अगर ये स्पीकर का वायर निकाल दें तो आवाज पे फर्क पड़ेगा? पड़ेगा. मतलब थोड़ा मीन्स कंप्लीटली जो भी एम्पलीफायर से आवाज जा रही है जीरो. ये माइक बंद कर दूं, जीरो. तो ये साउंड के ट्रांसमिशन में जितनी भी चीजें यूज हो रही हैं उसके किसी के भी प्रभावित होने से द होल थिंग गेट्स अफेक्टेड. तो स्विच उगने से हमको इफेक्ट हो रहा है क्योंकि इस समय में हम इस शरीर के माध्यम से इस भौतिक जगत से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने को शरीर मान लिए हैं. इसलिए शरीर के माध्यम से हमको हो रहा है, इसलिए हमको शरीर के अनुभव होते हैं. जैसे सिंपल उदाहरण में इसको हल्का लेते हैं. आप जो है कार में जा रहे हैं, आप बहुत छोटे जॉब शुरू किए और 15 साल बाद बहुत गधा मजूरी करके अब आपके पास एक मारुति फंटी कार आपने ली और आप जा रहे हैं. पहली बार रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी कार टूट जाती है. आपको कुछ भी नहीं होता है लेकिन आपकी कार पूरी टूट जाती है, आपको दुख होगा. अब आप टैक्सी में जा रहे हैं और टैक्सी टूट जाती है, आपको कुछ नहीं होता, आपको दुख होगा. क्या डिफरेंस है दोनों? क्योंकि टैक्सी आप जानते हैं कि टैक्सी है, मेरी कार नहीं, लेकिन उसको आपने मान लिया ये मेरी कार है. तो उसी तरीके से वर्तमान में हमने अपने को शरीर से संबंधित किया हुआ, दिस इज मी. और ये केवल मानना हम बोल रहे हैं, मानना मीन्स इट्स नॉट जस्ट ओके तो हम समझ गए तो कल से नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं. ये बहुत डीपली इनग्रेन है हमारी कॉन्शियसनेस में, इसलिए इसको इससे निकलने के लिए प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है. इट इज जस्ट नॉट सो सिंपल कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे हम जस्ट समझ गए ओके आई नॉट दिस बॉडी. दो इट विल हेल्प, जस्ट बाई अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प, बट स्टिल पूरी तरह से उससे अलग होने के लिए यू हैव टू गो प्रोसेस. तो इसलिए सुई चुभने से आपको परेशानी हो इसलिए जरूरी नहीं कि इसका मतलब है कि आप ही शरीर हैं. अगर ऐसा होता तो एक मशीन बना सकते हैं जिसमें जब प्रेशर, सुई का प्रेशर दबाया जाए तो प्रेशर रिसेप्टर्स हैं, जब उतना पाउंड प्रेशर पड़ेगा और मशीन के एक सिस्टम बना दिया जाए उसमें स्पीकर लगा दिया जाए उसमें वो चिल्लाएगा ओ और आप भी चिल्लाएंगे. तो क्या वो मशीन वो पिन के चुभने को फील कर रहा है? तो वो भी चिल्ला रहा है, आप भी चिल्ला रहे हैं, वही चीज, वो सब चीज वही हो रही है. लेकिन अंतर क्या है कि वहां पर परसेप्शन नहीं है पेन का, आप में परसेप्शन है. तो यदि हम केवल ये बॉडी होते, यदि हम केवल मैटर होते तो फिर आप में और उस मशीन में जो चिल्ला रही है उसमें कोई अंतर नहीं था. लेकिन अंतर है, हम सिंपली समझ सकते हैं कि मशीन इज नॉट फीलिंग द पेन, शी साउंडिंग. उसकी जगह आप लगा सकते हैं कि जब प्रेशर पड़ेगा कोई पिंच उगाएगा तो मशीन में सवाल निकलेगी, हा 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 हा, वेरी नाइस. ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप आपको कोई स्विच हुआ है तो आप हंस नहीं सकते, यू हैव टू क्राई. सो दिस इज द डिफरेंस. दैट मींस यू आर परसीविंग द पेन बट द मशीन इज नॉट परसीविंग द पेन. दैट मींस यू आर नॉट दिस बॉडी. दो इट मींस अपीयरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, यस बॉडी को पिंच हुआ है तो आपको दर्द हुआ. सो रियलिटी कैन बी वेरी डिसेप्टिव बिकॉज इट्स सटल, सूक्ष्म है. इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल. जैसे हमने ये बताया, अभी कोई भी चीज ऑफ हो गई, एक अनपढ़ आदमी है वो देखेगा स्पीकर के अंदर वो भी होते हैं वॉइस, उसको पता नहीं मैं पीछे उस रूम में बैठा हुआ हूँ, रिमोट से आवाज आ रही, ही इज नॉट सीइंग मी. अभी वो आता है और स्पीकर के आवाज को बढ़ाता है, अरे आवाज बढ़ गई, आवाज कम करने की आवाज कम हो गई और स्पीकर ऑफ करने की आवाज बंद हो गई. दैट मीन्स आवाज का स्रोत है स्पीकर, बट एक्चुअली इट इज नॉट. सो देयरफॉर कैन बी सेड समबडी हियर रेज सम क्वेश्चन. और कोई प्रश्न है किसी?
बॉडी की एक आकार, आत्मा का क्या आकार?
यस, जैसे आपके ये शर्ट का आकार क्या है? दो हाथ है. क्यों है इसमें दो हाथ? शरीर के दो हाथ है. तो उसी प्रकार से ये बॉडी एक वस्त्र है, तो बॉडी का एक आकार होता है, ये दिखाता है कि निश्चित रूप से आत्मा का भी आकार होता है, तभी तो सबके बॉडी का आकार है. मैं बताता हूँ, जैसे ही आत्मा निकल जाता है शरीर से, जब आदमी मर जाता है तो उस शरीर का आकार धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है. तो इसलिए पहली चीज तो आकार है आत्मा, तो लेकिन क्या आकार है वो जानकारी केवल अपनी बुद्धि से नहीं पता लगा सकते, क्योंकि वो हमारी ब्रेन सब्सटेंस के बियॉन्ड का सब्जेक्ट है. उसके लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन नॉलेज कमिंग फ्रॉम हायर अथॉरिटीज. तो उसके अनुसार आत्मा का जो आकार है, इट इज सिमिलर टू द फॉर्म ऑफ लॉर्ड, वो भगवान के आकार के समान है. बाइबल में कहा है गॉड मेड मैन इन हिज फॉर्म. तो आदमी का यानी दो हाथ दो पैर, यही आत्मा का आकार है जो भगवान का आकार है, और शरीर का यानी जो मनुष्य का जो आकार है दैट इज सिमिलर टू द फॉर्म ऑफ द सोल.
एक सेंटेंस, आत्मा
हाँ अभी अविभाज अविभाजित अंश. आत्मा जो है विभिन्न अंश है भगवान का, शास्त्र सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल. भगवान का अंश है लेकिन इटर्नली सेपरेट है, सनातन रूप से अलग है. ऐसा नहीं कि सब कुछ मिला करके एक बना दिया और फिर टुकड़े टुकड़े करके अलग कर दिया, ऐसा नहीं. भगवान और उसके सब अंश वो हमेशा नित्य रूप से अलग अलग सेपरेट है. यस
समझने इसमें, जैसे कि अभी आज से 24 साल पहले व्हाट वाज आई आई वुड, बट क्योंकि ये जन्म हुआ है सो आई हैव सम रिस्पांसिबिलिटी ऑन मी. आई मीन इट कैन बी टुवर्ड माय पेरेंट्स फॉर माय रिलेटिव्स फॉर माय फ्रेंड्स फॉर माय सेल्फ बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी. आई मीन आई कैन नॉट लीव देम एट दिस स्टेज ओके आई एम गोइंग टू सम काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड आई लिव ओवर देयर इन मेडिटेशन एंड इवन आफ्टर सम इयर्स व्हेन आई डाई आई डोंट नो व्हाट आई विल बी.
तो वर्तमान समय में आत्मा हम है और हमारा एक इस समय एक शरीर धारण किए हुए, इसलिए हमारी टू फोल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है. वन इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस बॉडी एंड वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस सोल. सो दिस सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी, फैमिली, आवर बॉडी, दीज आर ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस बॉडी. सो देर आर डायरेक्शन इन द स्क्रिप्चर्स वॉट आर दिस ड्यूटीज, हाउ द सोसाइटी कैन बी मेंटेन, हाउ द बॉडी कैन बी मेंटेन, हाउ दिस बिगर बॉडी दैट इज द सोसाइटी कैन बी मेंटेन. देर आर डायरेक्शंस. सो एंड देर आर डायरेक्शंस कि जो आत्मा है उसको जो वास्तविकता है उसकी उस तक कैसे ले जाएगा, उसकी डायरेक्शंस की. सो ह्यूमन बींग इज सपोज टू कैरी आउट दीज टू फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डायरेक्शंस फॉर बोथ ऑफ देम आर गिवन इन स्क्रिप्चर्स. scriptures doesn't give only directions related to Paramatma, but directions related to both. So we will know this. Which one?
आपने कहा कि अगले जन्म में अगर इस जन्म में हमने सही है रिस्पॉन्सिस नहीं दी भाई तो हमें ऐसे
जानवर
सर ये प्रूफ कर सकते हैं
मतलब ओके या तो हम अभी कल और कल नहीं परसों क्लास में देखेंगे कि व्हाट प्रूफ के प्रोसेसेस क्या है हाउ डू वी प्रूव एनीथिंग व्हाट इज द वे टू गेन नॉलेज तो प्रूफ आप सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रूफ One is pratyaksha praman, seeing is believing, that is one type of proof. But this is applicable to very only few things. Kyunki hamari perception power jo hai bahut kam hai. So we cannot prove everything just by directly perceiving. So there are, for the subject matter which is beyond the senses, we have to depend on another type of proof which is called shruti praman, hearing from authorities. Jaise, how do we know who is our mother? It's not possible by direct proof. It's only possible by hearing from the mother. Mother can inform us, I am your mother. And that's right, and that's perfect knowledge. Otherwise, it is not possible to know who is our mother. So, usi prakar se, aapka jo prashna hai, this is beyond our capacity, beyond our brain power, beyond our senses. So, therefore, for such knowledges, we have to depend on authorities. So, Bhagavad Gita and the scriptures, ye wo authority hai. जिसमें वो सब ज्ञान है जो हमारे इंद्रियों पे पड़ेगा अभी हम थर्ड क्लास में सेकंड या थर्ड क्लास में देखेंगे हाउ डू वी एक्सेप्ट दैट शास्त्र इज दैट अथॉरिटी विच इज ऑल परफेक्ट वी विल ऑल्सो डिस्कस दिस नॉट दैट जस्ट ब्लाइंडली वी थिंक दैट वी डिस्कस दिस और कोई प्रश्न ओके सो वी विल चेंज फाइव मिनट्स हरे कृष्ण मंत्र एंड देन वी विल हैव प्रसाद